नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 7 अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 44। सुयज्ञोऽन्वयं शेते शोचत यह श्रोता यो अनुभक्ते स न दृश्येत कहिर्चित। सुयज्ञो नन्वयं शेते मूढायमनुशोचत यह श्रोता यो अनुभक्ते स न दृश्येत कहिर्चित। सुयज्ञो न वनयं शेते मूढायमनुशोचत यह श्रोता स्वनुवक्ते स न दृश्येत कहिर्चित। सुयज्ञः सुयज्ञ नामक राजा ननु निसंदेह अयम यह शेते लेटा है मूढ़ हे मूर्ख जनो यम जिसको अनुशोचत रोदन करते हो यह जो श्रोता सुनने वाला यह जो अनुवक्ता बोलने वाला यह इस संसार में सह वह ना नहीं दृश्येत दृष्टिगोचर है कहिर्चित किसी भी समय। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की कृपया मेरे पीछे दोहराइए। यमराज ने आगे कहा हे शोक करने वालों तुम सारे के सारे मूर्ख हो। तुम जिस सुयज्ञ नामक व्यक्ति के लिए शोक कर रहे हो वह तुम्हारे समक्ष अब भी लेटा है वह कहीं नहीं गया तो फिर तुम्हारे शोक का क्या कारण है। पहले वह तुम्हारी बातें सुनता था और उत्तर देता था किंतु तुम लोग अब उसे ना पाकर शोक कर रहे हो यह विरोध मूलक आचरण है क्योंकि तुमने वास्तव में उस व्यक्ति को कभी नहीं देखा था जो शरीर के भीतर रहकर तुम्हें सुनता था और उत्तर देता था। तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम जिस शरीर को हमेशा देखते आए हो वह तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। इसका तात्पर्य पढ़ता हूँ ध्यानपूर्वक सुनिए। बालक के रूप में यमराज द्वारा किया गया यह उपदेश सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आने वाला है। जो व्यक्ति शरीर को आत्मा मान लेता है वह निश्चय ही पशु सदृश है। यस्याद बुद्धि ही कुंपे त्रिधातु के सा एव गोकरा। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि मृत्यु के बाद मनुष्य चला जाता है यद्यपि शरीर रहता है किंतु मृत व्यक्ति शरीर को तो देखता है किंतु आत्मा को नहीं देखता। जैसा कि भगवद्गीता में वर्णन हुआ है देहे नस्मिन यथा देहे शरीर का मालिक आत्मा भीतर रहता है। मृत्यु के बाद जब श्वास भीतर जानी बंद हो जाती है तो लोग समझ सकते हैं कि शरीर के भीतर जो व्यक्ति अभी तक सुनकर उत्तर दे रहा था अब चला गया। अतः वास्तव में सामान्य व्यक्ति यह निष्कर्ष निकालता है कि आत्मा शरीर से सचमुच भिन्न था और अब चला गया है। इस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति भी अपने होश में रहकर ये जान सकता है कि जो व्यक्ति शरीर के भीतर था और सुनकर उत्तर दे रहा था वह कभी दिखा नहीं। अतएव जो कभी दिखा ना हो उसके लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है। हरे कृष्ण। यमराज ने आगे कहा, हे शोक करने वालों, तुम सारे के सारे मूर्ख हो। तुम जिस सुयज्ञ नामक व्यक्ति के लिए शोक कर रहे हो वे तुम्हारे समक्ष अब भी लेटा है, वे कहीं नहीं गया, तो फिर तुम्हारे शोक करने का क्या कारण है? पहले वह तुम्हारी बातें सुनता था, उत्तर देता था, किंतु तुम लोग अब उसे न पाकर शोक कर रहे हो। यह विरोध मूलक आचरण है, क्योंकि तुमने वास्तव में उस व्यक्ति को कभी नहीं देखा था जो शरीर के भीतर रह के तुम्हें सुनता था और उत्तर देता था। तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस शरीर को हमेशा देखते आए हो वह तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। तो बाजी परपट में बड़ी सुंदर बात लिख रहे हैं कि ये उपदेश सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आने वाला है। हमारी जो प्रचार है, जो प्रीचिंग है, इसी से स्टार्ट होती है कि नहीं? शुरुआत इसी से करते हैं ना। यहाँ पे यमराज, यम राज का शाब्दिक अर्थ क्या है? 12 महाजनों में से एक हैं, एक रीन, फाइन, नो प्रॉब्लम। कहाँ के स्वामी हैं? यमलोक के, ठीक है। पर यमराज का शाब्दिक अर्थ क्या है? व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन? कुछ तो मीनिंग होना चाहिए ना। हम जब किसी का नाम रखते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई अर्थ, गोविंद, गो मतलब गौएं, गो मतलब इंद्रियां, उनको स्वामी, गोपाल इंद्रियों के पाल, गौओं के पालक, मतलब हर एक नाम का शक्टासुर, शकट का सुर का पद करने वाले, इस तरह करके बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनमें हम जो है कुछ जब शब्द लेते हैं तो उसका कोई ना कहीं अर्थ निहित होता है, कहीं ना कहीं उसका मीनिंग होता है। तो यहाँ यमराज का शाब्दिक अर्थ क्या है? वो तो यमलोक हो गया ना। देखिए, जब आप पतंजलि का योग शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें आते हैं यम नियम, आते हैं ना, कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो डिसाइड करता है। भगवान कहते हैं कि आपको मेरे आदेश के अनुसार कार्य करना है। ये भगवान ने 3 अध्याय के 31 श्लोक में भी कहा, जो श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित होकर मेरे आदेश के अनुसार कार्य करते हैं वो सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वो नियम यम जो है, फ्रेम कौन कर रहा है, उसका राजा कौन है, मृत्यु लोक के लिए क्या नियम है, क्या कायदे कानून है, इनको कौन फ्रेम कर रहा है, कौन सेटल कर रहा है, और उसी के अनुसार उसको फल देना है। भाई आपको नरक जाना है कि स्वर्ग जाना है, कौन से लोक में जाना है, कौन डिसाइड कर रहा है, किसके थ्रू, किसकी मार्फत? भगवान खुद तो खाता लेके नहीं बैठे हुए ना, उनके पास बैंक है, सब कुछ है, सब ज्ञान है, पर किसी का, जैसे पीएम के पास सब नॉलेज है पर उसको कैबिनेट मिनिस्टर चाहिए, उसके बाहर काम करेगा वो, ये एजुकेशन मिनिस्टर है, ये गृह मंत्री है, ये रक्षा मंत्री है, फलाना मंत्री है, ये मंत्री, वो मंत्री कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि फल मैं देता हूँ, पर किसके मार्फत देते हैं, किसके, कौन उसके रूल्स फ्रेम करता है, कौन रूल्स फ्रेम करता है? आपकी जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद जो आत्मा है वो सबसे पहले कहाँ जाती है, कितनी देर में पहुँचती है? 2 मुहूर्त में। एक मुहूर्त कितना बड़ा होता, एक मुहूर्त का साइज क्या है, 48 minutes, टोटल 96 मिनट्स में एक घंटा 36 मिनट में वो जो आत्मा है यहाँ से यमलोक तक जा रही है। यमलोक के स्वामी कौन है? यमराज। तो क्या कर रहे हैं वो उसके ऊपर डिसीजन देते हैं कि इस आत्मा को कहाँ जाना, व्हाट इज द डेस्टिनेशन। और फिर मजे की बात यह है कि जो आपका स्थूल शरीर है जिसकी यहाँ चर्चा हो रही है वो तो समाप्त हो गया, देहांत हो गया, देह का अंत हो गया। आप उस शरीर को ले जाके जो है क्रीमेशन कर देते हैं, दाह संस्कार कर देते हैं, कब्र में डाड़ देते हैं, पानी में बहा देते हैं, पारसी लोग उसको ओपन में छोड़ देते हैं ताकि गिद्ध उस शरीर को नोच नोच कर खा जाए। हर एक के अपने अपने ट्रेडिशंस, अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन। परंतु इस भौतिक संसार के अंदर आपको किस प्रकार से चलना है उसके लिए जो रूल्स फ्रेम किए गए, बनाए गए, वो यमराज, यम मतलब नियम, कायदे, कानून, और उनके लिए जो है जो उनके राजा हैं उसके अनुसार आपको जो है कहाँ जाना है, दिस इज एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इंद्र अगर प्रसाद करता है तो किसकी इंस्ट्रक्शन में करता है, किसके भाई से कार्य कर रहा है, किसके इंस्ट्रक्शंस में कर रहा है। ये सारे कार्य जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के आदेश के अनुसार हो रहे हैं। बट ही हैज डिप्यूटेड पीपल टू डू द जॉब्स, सबको उसने जिम्मेदारी सौंपी हुई है। यस, ये काम आपका है, ये काम आपका है, ये काम आपका है, ये काम आपका, आपको ये काम करना है। और वही यमराज जो है बालक का रूप धर के आए हैं। और क्या बता रहे हैं? दो चीज़ों में डिफरेंस बता रहे हैं कि ये जो व्यक्ति जिसका देहांत हो गया है, जो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, इसकी आइडेंटिटी, पहचान एक नहीं पर दो थी, एक जो पड़ा हुआ है और दूसरा जो चला गया। अब यहाँ पे एक बड़ी सुंदर बात आई है इसके अंदर, इसके परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति भी अपने होश में रहकर ही जान सकता है कि जो व्यक्ति शरीर के भीतर था और सुनकर उत्तर दे रहा था वह कभी दिखा नहीं। भगवद्गीता में उल्लेख आता है कि आत्मा इतना सूक्ष्म है, ना तो उसे को मार सकता है, ना वो किसी को मार सकता है। सो स्मॉल, इतना स्मॉल है। व्हाट इज द साइज? कितना? 1 कल्पना कीजिए, कल्पिस्त लिखा है, जब पढ़िएगा शब्द भगवद गीता के अंदर, जब दूसरे अध्याय के अंदर जो है भगवान ये बात बता रहे हैं तो उसमें जो है इस बात को स्पष्टता पढ़िएगा कि क्या लिखा जा रहा है। बालक शता भाग से श्रद्धा कल्पित से च, कल्पना कीजिए, एग्जैक्ट साइज फिर भी नहीं बताया। यहाँ जो है श्वेताश्र उपनिषद से इसका जो उल्लेख आ रहा है उसमें चर्चा आ रही है कि कल्पना कीजिए, एग्जैक्ट साइज इज स्टिल नॉट टोल्ड। उसके बाद इसके दूसरे भाग में भी लिखते हैं, भागो जीव सभिज्ञ है इसे चांद्याय कल्पते, फिर कल्पना कीजिएगा। और जब आप जो है कल्पना की बात होती है तो दिस मीन्स कि इमेजिन, इमेजिन मीन्स कि आप सोचिएगा इतना छोटा हो सकता है। क्या छोटा बताया? कि बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर। नोक, नोक कितनी छोटी होती है हम देख नहीं पाते, और उसका 10,000वां हिस्सा, तो ऐसा 10,000वां हिस्सा बोल कैसे सकता है? ऐसा सूक्ष्म तत्व जो है वो बोल कैसे सकता है, वो सुन कैसे सकता है, वो कार्य कैसे कर सकता है? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, क्या है उसका तरीका, क्या है? अभी हम जो है सिर्फ पांच चीज़ों की चर्चा करते हैं आमतौर पे, वी टॉक अप ओनली 5 things, ये 5 ज्ञान की इंद्रियाँ हैं, उसके अनुसार जो कार्य हो रहे हैं हम उनकी चर्चा करते हैं, या 5 कर्म की इंद्रियाँ हैं उनके अनुसार चर्चा करते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि मैं डॉक्टर होने के नाते बता रहा हूँ, मेडिसिन के अंदर जब हम एंटर होते हैं तो हमें 3 सब्जेक्ट बिगनिंग में ही पढ़ाने शुरू कर दिए जाते हैं। ایک سبجیکٹ ہے اسٹرکچر آف ہیومن باڈی، جس کی مینول اتنی موٹی ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک، یہاں سے لے کے یہاں تک اس سائز کی، کتنا کمپلیکس اسٹرکچر ہے، کتنا کمپلیکس اسٹرکچر ہے. اور دوسرا پارٹ جو پڑھایا جاتا ہے فیزیولوجی ہے، مطلب وہ بھی مینول اتنی ہی بڑی ہے، اس میں ان اسٹرکچرس کا فنکشن ہے، کیسے کاریہ کرتے ہیں. ہم نے بڑی آسانی سے کہہ دیا بلڈ شوگر ہو گئی جی، وہ شوگر کیسے شریر میں جا رہی ہے، کیسے ابزارب ہو رہی ہے، کیسے ایکوملیٹ ہو رہی ہے، کیسے اسٹور ہو رہی ہے، اس کے لیے کتنے کتنے لمبے کیمیکل ریئیکشنز ہیں. سائنٹسٹ آج بھی جو ہے بہت باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے یہ پیدا کر لیا، وہ پیدا کر لیا، ان ریئیکشنز کیوں ہو رہے ہیں، کس لیے ہو رہے ہیں، کس کے دوارا ہو رہے ہیں، اس کا انالیسس آج بھی نہیں کر پائے، ناٹ پاسبل. فنکشن کے ساتھ ساتھ تیسرا پارٹ بایو کیمسٹری ہے، اس کے کیمیکل کمپوزیشن، کیمیکل ریئیکشنز کیا ہے، اس میں اتنی موٹی کتاب ہے. یہ تو ابھی اسٹرکچر ہی پڑھا جا رہا ہے، آگے جا کے ڈاکٹری کی باتیں تو الگ ہیں. مطلب میرا کہنے کا تاتپریہ یہ ہے کہ اس شریر کے اندر جو آتما ہے، جس کا سائز بال کی نوک کا 10,000واں حصہ ہے، اس کو کاریہ کرنے کے لیے ایک انسٹرومنٹ چاہیے، اور انسٹرومنٹ ہے آپ کی ہیومن باڈی. پر اس انسٹرومنٹ کو بھی کام کرنے کے لیے اس کے پیچھے جو ریگولیشنز ہیں، ہاتھ اٹھایا نیچے کیا، تو یہ ریگولیشن جو آ رہی ہے اس کے لیے بھی کتنے کیمیکلز انوالوڈ ہیں، کتنی نروز انوالوڈ ہیں، کتنی مسلز انوالوڈ ہیں، کتنی اٹیچمنٹس ہیں، کتنی بونز ہیں، آپ امیجن نہیں. اور یہ سارے کاریہ جو ہے کس کے مادھیم سے ہو رہے ہیں، ایک سوکشم آتما کے مادھیم سے. ہم کو یہ محسوس ہو کہ یس آتما ہے، آتما پریزنٹ ہے، تو اس کا ہمیں پروف ملتا ہے کانشیسنیس سے کہ یس وی آر کانشیس، وی آر کانشیس. پرنتو اگر آپ دھیان پوروک سوچیں کہ جو میڈیکل ٹرمینالوجی میں انکانشیس ہے، اس میں بھی آتما کی کانشیسنیس وراجمان ہے، کیونکہ بیہوش ہوتے ہوئے بھی ہردے بھی چل رہا ہے، چل رہا ہے نہیں چل رہا، سانس بھی چل رہا ہے. آپ بے ہوش ہیں، ابھی یہاں کسی کو چکر آ گیا، بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہونے کے بعد ہاتھ پیر شتھل ہو جائیں گے، آنکھیں بند کر لے گا، دکھے گا نہیں، بلا رہے ہیں کان سے سنے گا نہیں، پر کانشیسنیس پھر بھی ہے، کیونکہ اس کا ہردے ابھی بھی چل رہا ہے، سانس ابھی بھی آ رہا ہے، کڈنیز فنکشن کر رہی ہیں، لیور فنکشن کر رہا ہے، مطلب باڈی کے اندر جو انگ ہیں ان کے فنکشن ہیں. صرف جو باہر سے سوکشم چیزیں دکھائی دے رہی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کاریہ نہیں کر رہے ہیں، وہ انکانشیس ہیں. پرنتو جو ڈیتھ ہو گیا ہے، مطلب انکانشیس بھی کہتے ہیں جی، 2 مہینے کوما میں رہا، 6 مہینے کوما میں رہا، 10 دن کوما میں رہا، انکانشیس تھا، اب مرتیو کو پراپت ہو گیا. انکانشیس ہے تب بھی آتما اندر ہے، کانشیسنیس تب بھی ہے. جو کانشیسنیس اور جو شابدک انکانشیسنیس کا شبد بھید ہے اس کو سمجھنا، جو لٹرل میننگ ہے، جو ڈکشنری میننگ ہے کانشیسنیس انکانشیسنیس کا، وہ الگ ہے، اور جو کانشیسنیس کا شاسترک میننگ ہے وہ الگ ہے. ویکتی بے ہوش لیٹا ہوا ہے تو اس کا سانس چل رہا ہے نہیں چل رہا، ہردے دھڑکن کر رہا ہے نہیں کر رہا، پیشاب کی نلی لگائی ہے تو پیشاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اندر بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا، لیور کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، مطلب اس کے جو اندر کے انگ ہیں سارے کام کر رہے ہیں، صرف جو سامنے سے سوکشم چیزیں دکھائی دیتی ہیں وہ کاریہ نہیں کر رہی ہیں، وہ ہم کو دکھائی دیکھ نہیں سکتا ہے، بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، بے ہوش ہے، ہوش میں نہیں ہے. پرنتو ہوش میں نہ ہوتے ہوئے بھی وہ ویکتی کے اندر کانشیسنیس ارتھات آتما وراجمان ہے، اور اس آتما کا جو ایک لکشن ہے کانشیسنیس، وہ اس کے اندر اب بھی ہے، وہ اب بھی ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غائب ہو گئی. پرنتو جب مرتیو ہو جاتی ہے، جیسے آپ لوگ باجی لکھ رہے ہیں کہ شواس بھیتر جانی بند ہو جائے، شواس بھیتر جاتے بند ہوتے ہی آپ کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، अल्टीमेटली हम कहते हैं डिक्लेयर कर दो जी व्यक्ति डेड है। वही डेड व्यक्ति के अंदर क्या चीज गायब हुई? सबसे पहले आत्मा चली गई। आत्मा जाते ही जो कॉन्शियसनेस थी वो समाप्त हो गई, और कॉन्शियसनेस के खत्म होते ही जो इंस्ट्रूमेंट था उसने काम करना बंद कर दिया। मशीन लगी हुई है, वो इलेक्ट्रिकल करंट चाहिए उसको चलाने के लिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? आप कंप्यूटर चलाते हो तो विंडोज चाहिए, वॉस चाहिए, चाहिए सारे प्रोग्राम्स चाहिए। वो सारे प्रोग्राम्स जो हैं भगवान ने किस तरीके से मशीन में फिट किए हैं उसको हम इमेजिन नहीं कर सकते। वो प्रोग्रामिंग क्या है? वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिक्शनरी कौन सी है? वर्ल्ड की शब्दकोश, या जनरल भाषा में कहे कि दुनिया भर के अंदर, संसार भर के अंदर सबसे ज़्यादा शब्दों का जमाव, सबसे ज़्यादा विचारों का जमाव, सबसे ज़्यादा थॉट्स का जमाव किसके पास है? आपके दिमाग के पास, योर ब्रेन। आप इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे तो इसके अंदर इतने विचार भर गए हैं कि आप सारा जीवन लिखते रहेंगे, समाप्त नहीं होंगे। प्रभुपाद ने विचारों का एक छोटा सा पोर्शन दिया हमको, छोटा सा, जितना उनके पास समय था उसी के अनुसार दिया ना, जितने समय में जितना दे सकते थे उतना ही दिया ना, उससे ज्यादा तो नहीं दिया ना, वही हमसे नहीं पढ़ा जाता। कितने लोगों ने पूरा वेदाबेस पढ़ा, ऑल लेक्चर्स, ऑल कन्वर्सेशंस, ऑल डिस्कशंस, कितने लोगों ने पूरी पढ़ी? किसी ने कुछ हिस्सा पढ़ा है, 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 बस चलो गुजारा होगा। अब सोचिएगा कि कितना वास्ट शब्दकोश, कितना वास्ट विचार, कितने वास्ट थॉट्स जो हैं इस दिमाग में भरे हुए, पर किसके वजह से काम करता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? दैट फ्रैक्शन ऑफ लॉर्ड्स एनर्जी क्या है? वो आत्मा, उस आत्मा की वजह से काम कर रहा है। यहाँ पर जो है रूपा जी अंत में बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, अतएव जो कभी दिखा ना हो उसके लिए शोक करने की आवश्यकता क्या? तो शोक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शोक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? व्हाट शुड बी द रोल, बताइए। एक बड़ा सुंदर श्लोक पढ़ता हूं आपके लिए, ये उन लोगों के लिए है जो कि मृत्यु के उपरांत जो है रोते बहुत है। दे क्राई ए लॉट, दे वीप ए लॉट, उनके लिए बड़ा ही सुंदर श्लोक है। श्लेष्माश्रुबंध है मुक्तम प्रेतो भुक्ते यतो वशः तस्मान रोदितव्यम ही क्रिया कार्याश्च शक्तितः। मृत आत्मा को अपने बंधु बांधवों द्वारा त्यक्त कफयुक्त आंसुओं को विवश होकर पीना पड़ता है, इसलिए रोना नहीं चाहिए। शोक करने का मतलब है रो रहे हैं आप, तो आंसू लंबे लंबे बांध हैं। क्या होता है, बैठे हैं, थोड़ी हंसी की बात भी हो रही है, थोड़े ऐसे भी हो रहे हैं, जैसे कोई नया व्यक्ति आया तो लंबे लंबे आंसू बहा के रोना शुरू कर दिया। नाटक होता है, होता है नहीं होता? जी वो जलंधर से मेरे रिश्तेदार आ गए, जैसे ही दरवाजे के पास आए तो बड़ी जोर जोर से आवाजें लगा के रोना शुरू एकदम, और दो मिनट के बाद जो है उन्हीं के साथ बैठ के हंसते हुए बातें हो रही। वो रोने का जो पोर्शन था, जो हमारी एक्टिंग थी, डायरेक्टर ने बोला अब खत्म, अब नॉर्मल लेवल पे आ जाओ। और शास्त्र कहता है कि आप जो आंसू बहाते हैं, कभी आप देखिएगा कभी आपको आंसू आए, आंसू दो कंडीशन में आते हैं, कौन सी कंडीशंस हैं? या तो सुख होगा, बहुत हैप्पीनेस होगी, या शोक होगा, दोनों कंडीशंस में आंसू आते हैं। तो आंसू जो है उसके लिए भगवान ने एक छोटी छोटे दो छेद फिट किए हुए हैं। टीयर्स मस्ट है, आपको अभी आ रहा है हर एक व्यक्ति, कोई उससे छुपा या बचा हुआ नहीं है, पर कितना है, इतना है कि आपकी आंखें उससे गीली रह सके। दैट इज द रूल। कोई भी बॉडी का अंग अपनी स्किन को छोड़कर, इस स्किन को छोड़कर जो कि एयर के कांटेक्ट में है, वो गीला रहना जरूरी है, वरना ड्राइनेस हो जाएगी तो काम करना बंद कर देगा। आंखें गीली रहती हैं, कान गीला रहता है, उसमें हल्की हल्की मैल बनती रहती है जो मिट्टी धूल धूल पड़ती है, नाक गीला रहता है, जीवा गीली रहती है। इट इज़ अ मस्ट, ये भगवान की तरफ से दिया हुआ कानून है। पर वो आंसू जो हमारी आंख के अंदर बन रहे हैं, इतनी ही मात्रा में बन रहे हैं जिससे कि हम उसको, आंखों को गीला रख सकें, एक्सेस नहीं है। और उनको गीला रखने के लिए आंखों का जो अंदर वाला हिस्सा है, जो नाक के पास साथ लगता है, उसमें दो छोटे छोटे छेद हैं, एक नीचे है और एक ऊपर है, उसके रास्ते आंसू जो है नाक के अंदर आ जाते हैं। तो जब भी कभी व्यक्ति जो है ज़्यादा रोता है तो उसका थोड़ा सा नाक बहने लगता है, कभी आजमा के देखिएगा, नाक थोड़ा बहने लगता है। इट्स ये साइंटिफिक कानून है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इट्स ए नेचुरल थिंग। तो जो नाक के अंदर श्लेष्मा है, जो नाक के अंदर जो कफ है, वो उन आंसुओं के साथ मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर जो है पंचतंत्र के मित्र भेद में 365वें श्लोक में यही चर्चा हो रही है कि कफ युक्त आंसू उस मृत आत्मा को पीने पड़ते। आप तो उससे बहुत प्रेम करते थे, उसको तरह तरह के पकवान खिलाते थे, अजी आज मेरे घर में मेहमान आए हैं, मुझे उनके लिए शाही पनीर बनाना है, मलाई कोफ्ता बनाना है, बड़ी स्वागत सत्कार हो रहा है। और जब वो बेचारा मर गया तो उसको अपने कफयुक्त आंसू पिला दिए, जा भैया तेरा यही गति थी, तेरे को अब पनीर नहीं मिलने वाला है, तेरे को क्या मिल रहा है, मेरे कफयुक्त आंसू, पियो, खूब पियो, मजे करो। यही बात जो है स्कंद पुराण में कही गई है, वृत्तानां बांधवा ये तु मुच्यन्ते शुणि शूतले पिबन्ति शूनि तानि द्वा मृता पीता परत्रोये। कि मृतात्मा के बंधु बांधव भूतल पर जिन आंसुओं का त्याग करते हैं, उन आंसुओं को मृतात्मा परलोक में पीता है। इसलिए प्रभुपाद ने बड़ी सिंपल सी बात लिख दी, बड़ी आसान भाषा के अंदर, कि जिसको कभी देखा नहीं भाई, उसके लिए काहे शोक करते हो, काहे परेशान हो रहे हो, क्यों टेंशन में आ रहे हो, देखा है क्या उसको। इसी के संदर्भ में दूसरे अध्याय के 11वें से लेके 30वें श्लोक तक भगवान ने शरीर और आत्मा के भेद की चर्चा करी और समझाने का पूरा प्रयास किया। तो यहां पर जो है यमराज जी आगे आगे बता रहे हैं कि शोक करने वाले मूर्ख हैं। तो अगर हम जो है इस स्टेटमेंट को लेके चलें तो आपको संसार में अकलमंद कोई दिखाई दे रहा है क्या? समबड़ी जो शोक ना करता हो, रोता ना हो, आंसू ना बहाता हो, लंबे लंबे आंसू ना बहाता कोई है? इसका मतलब है कि हम लोग जो है मूर्खिस्तान में रह रहे हैं, चारों तरफ मूर्ख ही मूर्ख भरे हुए हैं। अभी तक वो हो क्यों रहा है? वो इसलिए रहा है कि हम लोगों ने अभी तक शरीर और आत्मा के भेद को पढ़ा जरूर है पर स्वीकार नहीं किया। अभी तक हम जो है आत्मा को ही शरीर मान लेते हैं और शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। जो उनका दोनों का डिफरेंस है, जो दोनों का भेद है, हमने उसको जो है अभी तक स्वीकार नहीं किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है। बातों में है, कैसे है, हाथी के दांत, खाने के और दिखाने के, और वो हाल है। इसको स्वीकार कर लेंगे तब समझेंगे कि हमने भगवान की वाणी को सही रूप में स्वीकार किया। तो आज नो है श्री लोकनाथ गोस्वामी जी का तिरोभाव है, तो उनके बारे में शॉर्ट में चर्चा करते हैं। लोकनाथ गोस्वामी के पिता का नाम था पद्मनाभ, भगवान चैतन्य महाप्रभु के निकट के अंतरंग सहयोगी थे। भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति में एब्जॉर्ब थे, उसमें मगन थे, उसमें इतने इन्वॉल्व थे कि उन्हें अपना भी होश नहीं रहता था। व्रज भूमि में रहने वाले सारे गोस्वामियों में सबसे बड़े थे। परंतु उन्होंने कहा कि मुझे प्रसिद्धि नहीं चाहिए, मुझे यश नहीं चाहिए, मुझे मान नहीं चाहिए, मुझे सम्मान नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरा नाम चैतन्य चरितामृत में कहीं भी आना नहीं चाहिए। उनका जो मन है वो किस डीटी के प्रति आकर्षित था? राधा विनोदी। कहाँ है राधा विनोदी? वृंदावन में प्रतिभू कहाँ है? राधा गोकुलानंद मंदिर कहाँ है? कहाँ है? नहीं, वृंदावन तो है, वो तो कह रहे हैं आप कहाँ रहते हो? पोस्ट ऑफिस के सामने। पोस्ट ऑफिस कहाँ है? मेरे घर के सामने। और दोनों कहाँ है? आमने सामने। ऐसे नहीं है, वृंदावन में राधा गोकुलानंद मंदिर कहाँ है? लेफ्ट में कि राइट में? सामने से जाएंगे तो, सामने से जाएंगे तो टुवर्ड्स यमुना ऑन दी लेफ्ट साइड। और वहां पे जो है सबसे बड़ी जो समाधि है वो लोकनाथ गोस्वामी की। उनका कहना था कि जो भागवतम पढ़ता है, श्रीमद् भागवतम का पाठ करता है, उसको सुनता है, वो मेरा मित्र है। राधा विनोद जो डीटी है ये लोकनाथ गोस्वामी के पास कैसे आई? यस, जब हम शुद्ध हृदय से भगवान के प्रति कुछ इच्छा करते हैं तो इच्छा अवश्य पूरी होती है। भगवान यही कहते हैं, अनन्य चेता सत्यम यो मां स्मृति नित्यशय तस्य अयम सुलभ पार्था नित्य युक्त से योगे न। मैं उसके लिए सुलभ हूँ। कैसे सुलभ है? कि लोकनाथ गोस्वामी ने कहा मेरी इच्छा है आपकी सेवा करने की, तो भगवान स्वयं आए और राधा विनोदे की डीटी उसको उनको दे गए, लीजिए इसकी सेवा करिए। तो वो क्या करते थे, कैसी सेवा करते थे? उनके डीटी को गले में टांगे घूमते थे, उस डीटी को गले में टांगे घूमते थे, थैले में डाल के गले में टांग के उसको जो है पूरे ब्रज में घुमा करते थे। लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य कौन है? नरोत्तम दास ठाकुर। और कितने शिष्य हैं? केवल एक, केवल एक। उन्होंने किसी और को शिष्य नहीं बनाया। नरोत्तम दास ठाकुर की क्या क्वालिटी थी लोकनाथ गोस्वामी के प्रति? कुछ तो गुण होगा ना जो शिष्य बना लिया। अब बड़ी है ना, बड़े मजे की बात बताई कि एक साल तक प्रतिदिन रात्रि के समय नरोत्तम दास ठाकुर फील्ड मतलब खेतों में जाते थे, और जहां पे जो है नरोत्तम दास ठाकुर ने अपना विष्ठा किया है, स्टूल पास किया है, उस जगह को साफ करते थे सीक्रेटली, बिना किसी को पता लगे। नोबडी न्यू इट। कितने लोग गुरु के लिए करने को तैयार हैं? कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा। ये आज के युग का प्रभाव है। तो राधा विनोदा जो है वो राजस्थान में है, उनकी प्रतिबिंब मूर्ति जो है वो गोकुलानंद टेम्पल में है, और लोकनाथ गोस्वामी जो है मंजुली मंजरी के रूप में वृंदावन लीला में पार्टिसिपेट किया करते थे। लोकनाथ गोस्वामी महाराज की। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की।